निर्मल चित से करूं ध्यान, आद जुगादी तू सत भगवान। प्रभु का जो ध्यान है उसकी जो सबसे ऊंची अवस्था है, या कहिए कि जो ठीक ध्यान है, वो कहते हैं कि निर्मल चित से होता है। चित जो है वो बुद्धि को भी कहते हैं, चित चेतना को भी कहते हैं। जैसे ईश्वर को कहा जाता है सच्चिदानंद, वो सत है, अर्थात पूरे सृष्टि में केवल उसी की सत्ता है। चित है वो चेतन रूप है और इसीलिए वो आनंद रूप है। तो सत चित आनंद, इससे प्रभु का वर्णन किया जाता है। यहां कह रहे हैं निर्मल चित से करूं ध्यान। यहां चित का मतलब बुद्धि से है, क्योंकि बुद्धि यदि निर्मल होगी तभी आपका ध्यान हो पाए। ध्यान का मतलब होता है कि प्रभु के अनुभव में पूरी तरह से एकाग्र हो जाए। तो बुद्धि में ये मल कौन सा है, ये निर्मल क्यों नहीं है? तो बुद्धि जब मन के संकल्प के अधीन हो जाती है तब बुद्धि मलिन हो जाती है। और हम जानते हैं कि साधारण रूप में जब हम स्मरण करते हैं तो मन के अंदर तरह तरह के संकल्प उठते रहते हैं, समस्याएं उठती रहती हैं, उनका समाधान उठता रहता है। तरह तरह की वासनाएं हैं, तरह तरह के संस्कार हैं, उससे संकल्प पैदा होते हैं। और ये संकल्प, ये मल जो है, बुद्धि को प्रभु में एकाग्र नहीं होने देता। तो इसीलिए यहां निर्मल चित्त के लिए भक्त प्रार्थना कर रहा है प्रभु से। लेकिन यहां जो ध्यान की बात आ रही है वो एक स्थिति की बात भी साथ में है। वो कहते हैं आद जुगादी तू सत भगवान। आदि जुगादी क्या मतलब? युग आदि जब से भी प्रारंभ हुए, आद जुगादी तू सत भगवान। हे प्रभु, तब से तेरी ही सत्ता है, इसीलिए तू ही सत। जब काल भी नहीं है, अर्थात समय का भी उदय नहीं हुआ था, वही आदि है। उस समय भी तू ही था, और मेरे सामने जब समय सीमा आ गई, काल आ गया, इसी काल को मौत भी कहते हैं, क्योंकि कुछ वक्त की आयु मिली है, वो वक्त जब समाप्त हो जाता है तो मौत आ जाती है। तो काल समय भी है, काल मौत भी है। लेकिन ये जब ये नहीं था तब भी तू था, और जब ये है तब भी तू है। तो आद जुगादी तू सत भगवान। हे भगवान, संसार में केवल तेरी सत्ता है, तू एवर प्रेजेंट है, इसीलिए जो सदैव है, जिसको काल भी खत्म नहीं कर सकता, तो मैं उसका ध्यान करूं, ये वो प्रार्थना भक्त कर रहा है। लेकिन होगा कैसे? निर्मल चित्त, बुद्धि की वो हालत जब मन के संकल्प से वो आजाद हो जाए, तब क्या होता है कि बुद्धि की दूसरी स्थिति बन जाती है, जिसको चेतना बोलते हैं। तो शुद्ध चेतन रूप बुद्धि खुद हो जाती है, और उस समय अंदर प्रभु का जब ध्यान होता है, उस समय प्रभु और भक्त ध्यान में एक हो जाते हैं। तो इसीलिए जिसको वाणी कह रही है आद जुगादी तू सत भगवान, ये उस भगवान के रूप का, उस भगवान का जो सत रूप है, जो जिसकी केवल सत, केवल उसी की सत्ता सारी सृष्टि में है, सारे संसार में है, तो उस भगवान का अनुभव इस भक्त को उस हालत में होता है जब ये बुद्धि संकल्प रहित हो जाती है, अर्थात संकल्प रहित मन जब बुद्धि के साथ रहता है, तब ये ध्यान की स्थिति बनती है। इसीलिए हमको जो कहा जाता है, वो कहते हैं नाम का सिमरन करो। इसके लिए वाणी कह रही है, अमृत नाम ये सार निधाना, जाके सिमरन से गए दुख नाना। तो आज तो हम दुखी हैं, सैकड़ों आइटम है, सैकड़ों विचार हैं जिसके कारण हम दुखी रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो इस बेचैनी से मुक्ति का रास्ता क्या है? वो कहते हैं कि अमृत नाम ये सार निधाना। जो निधाना है अर्थात निधान है, जो मंजिल है, जो तेरी शांति का खजाना है, निधान खजाने को भी कहते हैं, ट्रेजर को भी कहते हैं। तो शांति का ये सुख का जो खजाना है, उसका साधन जो है वो ये अमृत नाम है। अमृत नाम क्यों? क्योंकि वो नाम जो मन के संकल्प को नष्ट कर दे, मन के संस्कारों को नष्ट कर दे, उनको भी निर्मल कर दे, वो अमृत नाम है। क्योंकि अमृत ही जहर को खत्म करता है, यहां तक कि पूरी तरह से जहर खत्म होकर वो अमृत बदल जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं जाके सिमरन से गए दुख नाना। तो सिमरन की स्थिति में मन के संकल्प जो परेशान करते हैं, मन के संस्कार के जिनके कारण संकल्प उदय होते हैं, इनके नाश के लिए वो अमृत नाम है। अमृत नाम केवल वही होता है जो उस अमृत रूपी ईश्वर से प्रकट होता है, या जिसको हम कहते हैं सद्गुरु से जो प्रकट होता है। तो इसीलिए आदि काल से जब तक ये अध्यात्म जब से अध्यात्म विद्या चली, एक ही बात कही जाती है कि किसी भी गुरु के जो सिद्ध मंत्र है, जिसके जाप की परमिशन है, उसी में वो शक्ति होती है कि आपके मन के मल को वो साफ कर सकता है। लेकिन कब? ऐसा नहीं है कि एक तरफ से झाड़ू लगा रहे हैं कूड़ा साफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ से दरवाजा खुला हुआ है, हवा के साथ कूड़ा आता चला जा रहा है। तो भाई दरवाजा बंद करना पड़ेगा जहां से कूड़ा आ रहा है, तभी तो कूड़ा साफ हो। तो हम जो पांच विकार के अधीन होकर जो भोग विलास संसार में बढ़ाते रहते हैं, उसको डेवलप करते रहते हैं, जिसको विकास कहते हैं, उधर हमारा ध्यान ही नहीं है तो नाम क्या करेगा फिर आप? इसलिए सिमरन से पहले महाजी सादगी सत्य सेवा सत्संग की बात करते हैं। ये चार चीजें जब होंगी तब सिमरन में आपके आगे सफलता बढ़ेगी ना, तब सफाई होगी। नहीं तो आप यदि संसार में इच्छाएं नई नई पैदा करते रहे, दूसरों को देख देख के, और सत्पुरुष क्या कह रहे हैं, वाणी क्या कह रही है, उधर आपका ख्याल ही नहीं है, उधर ध्यान ही नहीं है, उसको सीख ही नहीं रहे। वो पूरा विज्ञान है। देखिए वाणी कह रही है कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। अब यहां भी वही चित्त की बात आ रही है। चित्त अर्थात बुद्धि यानी जीव। मेरा एक नाम जीव भी है, मेरा एक नाम बुद्धि भी है। तो जीव जो है उसमें निश्चय शक्ति भी है और उसमें चेतना भी है। मैं जानता भी हूं, मैं निर्णय भी करता हूं, दोनों काम मेरे होते हैं। मेरे मन में कितने संकल्प होते हैं, कितनी इच्छाएं होती हैं, लेकिन मैं निश्चित करता हूं किस संकल्प को पूरा किया जाए, किसको नहीं किया जाए। तो मैं निर्णय लेने वाला भी हूं और मेरे अंदर चेतना भी है, अर्थात मैं जानता भी हूं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। ये फाइनल बात। इस जीव के कल्याण के लिए, जीव की शांति के लिए, जीव की खुशी के लिए ये फाइनल बात है कि संसार में कोई वस्तु ऐसी पैदा हुई ही नहीं है जो तुझको शांति दे सके और जो तेरे चित्त को निर्मल कर सके। अब बताइए, पूरे संसार में कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं। और मैं संसार के ही प्रोग्राम बनाता हूं, इसमें अपने बच्चों की सफलता देखता हूं, अपनी सफलता देखता हूं, अपने देश की सफलता देखता हूं। तो ये कौन सी बुद्धि है? इसी को सांसारिक बुद्धि कहते हैं। तो सांसारिक बुद्धि संसारियों की नकल करती है, आध्यात्मिक बुद्धि गुरु की नकल करती है, प्रभु की नकल करती है, जो उसकी वाणी के रूप में हमारे सामने आ रही है, जो शास्त्र के रूप में हमारे सामने आ रही है। ये बुद्धि उस ज्ञान को, उस मार्गदर्शन को सीखने की कोशिश करती है और फिर अपने निर्णय बदलती है। जब बुद्धि का निर्णय बदलता है, इसकी बात समझ में आती है, तब फिर ये गुरु परायणता धारण करती है। अर्थात वो प्रभु जो गुरु रूप में संसार में आए, उन्होंने कैसा जीवन जीकर दिखाया, क्या उन्होंने मार्गदर्शन मेरे लिए किया, ये उसकी खोज करती है। वहां से ये निर्णय सीखती है कि संसार में तो कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो इस चित्त को अर्थात मुझको धीर दे सके, धैर्य दे सके, शांति दे सके, है ही नहीं। तो संसार में मुझको क्या सफलता मिलेगी, विचार करके देखो। इसलिए संसार की हर क्रिया, जो संसारी सुख भोगने के लिए आप करते हो, वो आपका पतन करके जाती है, विकास करके नहीं जाती। ऐसा यदि नहीं होता तो फिर इतने इतने बड़े राष्ट्र, इतने इतने बड़े बुद्धिमान लोग, एक इंग्लैंड जिसने भारत पर 200 वर्ष राज्य किया, पूरी दुनिया पर राज्य किया, अमेरिका तक पर राज्य किया, लेकिन आज उसकी क्या दशा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी क्या दशा हो गई, क्या हालत है। ऐसा देश, ऐसे लोग, विचारवान लोग आज अपने देश में ही कट्टरपंथ से परेशान है, बड़े बेचैन, क्या हो गया हमारे देश में। तो सांसारिक विकास, सांसारिक बुद्धि कहां ले जाती है मनुष्य। जो क्रिश्चियनिटी उनका उनके घर में थी, जो चर्च उनके घर में थे, वहां ताले पड़ने शुरू हो गए, लोग जाना ही नहीं चाहते वहां। तो धर्म का ये हाल है और अधर्म की कैसे वृद्धि हो रही है, ये विकास का परिणाम है जो आपके खुली आंख से आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से जिस पर वो देश बर्बाद हो रहा है, ये मेरा अपना शरीर रूपी देश भी तो बर्बाद हो रहा है, इसमें भी तो वही सब मैं कर रहा हूं जो वो लोग करते हैं। इसीलिए यदि मैं बुद्धिमान हूं तो मुझको ये बात सीख लेनी चाहिए, कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तक सीर। वो गोविंद, वो ईश्वर, वो प्रभु इस देह के अंदर ही उस प्रकार मौजूद है जिस प्रकार इस देह के अंदर मेरा मन मौजूद है। मन के अंदर वासना है, मन के अंदर संकल्प विकल्प है, मन के अंदर भोगों का शोर है, मन के अंदर विकारों का शोर है, और प्रभु के अंदर केवल शांति है, केवल आनंद है। तो अब बताइए, यदि मैंने अपनी बुद्धि का निर्णय इस वाणी के अनुसार, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार नहीं बदला और संसारों की नकल करने में ही मैं अपने को होशियार समझता रहा, तब कैसी बुद्धि है मेरी, ये कहां ले जाएगी मुझे। तो इस बालक बुद्धि को छोड़ें और उस स्रोत को पकड़ें, जिस स्रोत को पकड़कर, अर्थात वो प्रभु का स्रोत है, इसको पकड़कर मैं एक दिन पूर्ण शांत हो जाऊंगा, पूर्ण प्रसन्न हो जाऊंगा, पूर्ण आनंद से भरपूर हो जाऊंगा। इसीलिए एक बात ध्यान रखें कि आस निराशे आत्म बोधे, देखो वाणी कैसा गाइड करती है, आस निराशे आत्म बोधे, मन अपने को एह विध सोधे। अपने मन का शोधन, अपने मन का शुद्धिकरण मैंने किस प्रकार करना है, कि मन के अंदर तो आशा ही तो उठती है ना, आशा काय की उठती है, भोगों की, इंद्रिय सुखों की, उसी के लिए मैं लालायित होता हूं, उसी के लिए मेरे बच्चे लालायित होते हैं, उसी के लिए मेरा समाज लालायित होता है। लेकिन उस ईश्वर का बोध किसको होता है, वो कहते हैं आस निराशे आत्म बोधे, जो आशा से ही निराश हो जाए। मन के अंदर तो सुख की आशा ही पनपती है, और वो आशा पूरी ना हो तो निराश हो जाता हूं। लेकिन यहां कोई दूसरी बात है, वो कहते जो आशा से ही निराश हो जाए अर्थात जिसके अंदर पक्का निश्चय हो जाए कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। जिसकी बुद्धि में अपना यह निर्णय हो गया वो फिर आशा से निराश हो जाता है ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के विवेक के आधार पर। उसके अंदर फिर एक ही तलब रहती है कि कितनी जल्दी मैं प्रभु के नजदीक पहुंचूं, कितनी जल्दी मेरे मन की सफाई हो, कितनी जल्दी मेरी बुद्धि का स्वभाव बदले, जिसको कहते हैं कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो बुद्धि मेरी यह तमोगुणी होती है, तमोगुणी निर्णय करती है, किसी का कत्ल करके भी सुख प्राप्त करने की कोशिश करती है। यही बुद्धि जब मेरी सतोगुणी हो जाती है, सतोगुणी कैसे होगी, सत्कर्म से और सतविचार से। तो ये वाणी सतविचार है और इसके आधार पर जीवन को बनाना ये सत्कर्म है। तो यदि मैं इस प्रभाव पर चलता हूं तो मेरी बुद्धि एक दिन सतोगुणी हो जाती है, और मृत्यु हो भी जाए तो बुद्धि में क्योंकि चेतना है, चेतन बुद्धि है ये, इसलिए इसकी मृत्यु होती नहीं, चेतन की कभी मृत्यु नहीं होती। मैं सदैव जीवित रहता हूं लेकिन देह समझने के कारण धोखा खा जाता हूं। तो देह का मैंने सदुपयोग करना था, इस बुद्धि के गुण को परिवर्तन करने में अर्थात मैंने सतोगुणी बनने की कोशिश करनी थी, और सत का मतलब ही ईश्वर होता है, इसलिए जो बुद्धि जो जीव ईश्वर आधारित या ईश्वर के तरफ बढ़ने के लिए जीवन व्यतीत कर रहा है उसकी बुद्धि तो सतोगुणी बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि का जो को जो शरीर प्राप्त हुआ है वर्तमान, ये मर भी जाए उसको मालूम है कि प्रभु नया शरीर देंगे और उसमें ऐसा प्रारब्ध देंगे जैसे महाराज जी को प्रारब्ध मिला, कौन सा दुष्कर्म महाराज जी ने किया, सारे सत्कर्म किए, एक भी आपको ऐसा कर्म नजर आएगा ही नहीं जो उनका सतोगुणी करना। इस प्रकार का जीवन मेरा अगला जीवन होता है। तो सारा विज्ञान यदि मेरी बुद्धि में क्लियर है तो मैं मौत से भी नहीं डरूंगा, फिर मेरी मौत है ही नहीं तो डरू किससे, देह का परिवर्तन है बस, मन मेरा यही रहेगा, बुद्धि मेरी यही रहेगी, ईश्वर मेरा वही रहेगा। तो जो परमानेंट चीज है मैं उसकी तैयारी करूं, या जो नाश होने वाली है उसको उसकी तैयारी करूं। इसीलिए जब ये विज्ञान इस बुद्धि में क्लियर होता है, ये बात इसकी पक्की हो जाती है, तब इसके अंदर आशा से निराशा आ जाती है। संसारी वस्तुओं की आशा जो उसके अंदर पल रही थी, उसकी वासना जो पल रही थी, उससे ये निराश हो जाता है। निराश का मतलब ये नहीं जैसे हम निराश हो जाते हैं, निराश का मतलब यह है कि उसका विज्ञान इसको समझ में आता है, इसीलिए उसका मन इससे हट जाता है। विवेक के आधार पर मन उसके मनन को छोड़ देता है, इसको भोगों का मनन बोलते हैं। और फिर इस मन के अंदर क्या चलती है, प्रभु की बात चलती है, प्रभु के लिए जो कर्म है आगे बढ़ने के लिए उन कर्म के बारे में चिंतन चलता है, उन कर्म के बारे में मन के अंदर मनन चलता है। बुद्धि का निर्णय तो पहले हो ही चुका है, तभी ये मन का मनन बदल सकता है। तो इसीलिए उसके अंदर पता होता है कि आस निराशे आत्म बोधे, यदि मैं संसारी आशा से संसारी जो संपत्ति सुख है उसको लक्ष्य मैंने बना रखा था, जो मेरे मन के अंदर पांच विकार पैदा कर रहे थे, ये उनसे उसकी जो लगन है, उसका जो उसकी जो वासना है, उसका जो लगाव है, ये धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाता है। और लगाव कहां जुड़ जाता है, इसका प्रभु में लगाव जुड़ जाता है। ये प्रभु के लिए जीता है, प्रभु सुनने के लिए जीता है, निष्काम सेवा के लिए जीता है, सत्संग श्रवण के लिए जीता है, शास्त्रों के स्वाध्याय के लिए जीता है, और लोगों का दुख निवारण करने के लिए जीता है। सारे कर्म जो वासना पूर्ति के लिए थे वो सारे कर्म निर्वास होने के लिए होने लगते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अंदर ईश्वर का बोध क्यों नहीं करेगा, विचार करके दे। इसीलिए ये रास्ता विवेक से तय होता है, और जो शास्त्र का वर्णन है, जो शास्त्र में बातें हैं, ये उसी विवेक को प्रबल करते हैं। तो धीरे धीरे कहते हैं कि जो जन तिस की सरणी आया, मन बांछित तिसने फल पाया। जो प्रभु की शरण में आ गया, उसकी शरणागति धारण कर ली, अर्थात उसके दर्शन के लिए जीने लगा, मन वांछित तिसने फल पाया। हम कौन सा मन वांछित फल समझते हैं? किसी घर में बेटा नहीं है, प्रभु मुझे बेटा दे देगा, ये मेरा मन वांछित फल है संसार में, संसार। लेकिन मन वांछित फल वास्तव में कौन सा होता है? जिससे मन पूर्णतः वासना से आजाद हो जाए, अर्थात शांत हो जाए। मन उस शांति की तलाश कर रहा है जो ईश्वर प्राप्ति में है, जो निर्वास होने में है। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं कि मन वांछित का फल क्या मांग रहे हैं? संसार की वासना है पूरी करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं, उससे दुआएं मांग करते हैं। हम इसको मन वांछित फल कहते हैं। इससे तो मन बिगड़ जाता है, पहले से ज्यादा बेचैन हो जाता है। आपको पता नहीं, मान कहते प्रेमी एक इच्छा पूरी कर ले तो उससे कितनी अन्य इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, ये तो जो पता ही नहीं। एक बीज से पूरा वृक्ष खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार मन के अंदर एक तरह की जो वासना है वो हजारों तरह की वासना है, हर हजारों तरह की इच्छाओं पैदा कर देता है। तो इसलिए मन वांछित फल वो नहीं है, ये हमारे हम अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। मन वांछित फल वो है जो मन को शांति देता है, और मन को शांति कहाँ है? ईश्वर के आनंद में मन को शांति है, वहां जाकर ये मन लीन हो जाता है। और वास्तव में जब ये मन लीन होता है, तभी कहते हैं कि निर्मल चित्त से करूं ध्यान, आद जुगादी तू सत भगवान। वास्तव में निर्मल चित्त से उस समय ध्यान होता है इस देह के अंदर। वो ध्यान कितना गहरा हो जाता है कि गहरे ध्यान को ही समाधि कहते हैं, जहां ना शरीर का बोध है, ना संसार का बोध है, ना किसी मन के संकल्प का बोध है। मन शांत है, प्रभु के साथ एक है। मैं भी शांत हूं, प्रभु के साथ एक हूं। जब वो मेरी समाधि टूटती है, वो आनंद का जो खजाना था जहां मैं स्थित था, उससे जब नीचे आता हूं, तब पता लगता है कि यह संसार क्या है। इसलिए हमारे अंदर जो धारणा है कि संसार के काम सारे हो जाने चाहिए, सारे बहाने हमारे इसी वास्ते होते हैं सिमरन ना करने के, क्या करूं संसार में बहुत बिजी। सत्य यह नहीं है, सत्य यह है कि मेरी बुद्धि का निश्चय ही बैठा हुआ है कि संसार में ही एक दिन मैं पूर्ण संतुष्ट हो जाऊं। इसलिए ये ध्यान रखें, इस बात को पक्का याद रखें, कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसी। केवल गोविंद का नाम है, प्रभु की भक्ति है, प्रभु का स्मरण है, जो हर तरह की बेचैनी को मेरी हर लेगा। वर्तमान जन्म भी सुधर जाएगा और अगला जन्म भी सुधर जाएगा। मौत हो जाती तो यहां छूट जाता मैं, लेकिन मैं अज्ञानी हूं, अपने आप को सारी जिंदगी देह ही समझता रहता हूं। मैं समझता ही नहीं कि मेरी मौत है ही नहीं। इसीलिए यह अमृत विद्या है। अध्यात्म विद्या को अमृत विद्या क्यों कहते हैं? जिसने इस विद्या को सीख लिया वो अमृत हो जाता है, अर्थात वो मृत को, अर्थात मौत को वो नहीं देखता। महाराज जी के शरीर की डेथ हुई तो आपको लगता है कि महाराज जी को अफसोस हुआ होगा, अरे अब मैं मर जाऊंगा, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। संत के बारे में तो ये कहा जाता है, ये शरीर जितनी जल्दी हो समाप्त हो जाए ताकि मैं पूर्ण आनंद में परमानेंट स्थित हो जाऊं। संत की ये स्थिति, गुरु की ये स्थिति है। और मैं मरने से कितना डरता हूं, सारा संसार डरता है। कौन सा रास्ता पकड़ाता है? बड़े भाग्य से पूर्ण गुरु का सत्संग मिलता है, बड़े भाग्य से ये वाणी पढ़ने को मिलती है। हम भाग्यशाली जीव हैं जो हमारे वक्त में ये वाणी आई है। और कितने सरल रूप में आई है, जो भी वाणी सुन रहे हैं इसके कठिन अर्थ हैं क्या? बड़ी सरल वाणी, कभी बुद्धि लगाई ही नहीं इसके ऊपर, ध्यान से पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। हर शब्द अपना अर्थ खुद बता रहा है, मेरा दिल जब इसमें लगता है, जीवन की सफलता जब मुझे इसमें दिखाई पड़ती है, तब इस वाणी के सारे अर्थ मेरे सामने खुल जाते हैं और मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूं कि अमृत नाम ये सार निधाना, जाके सिमरन से गए दुख नाना। और दूसरी बात भी मैं सीख लेता हूं, कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। ओ रंग सत्यम।